दिन भर तारीख 7 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया फिलहाल निलंबित।
I think at present it is suspended. So let's see if we are able to commence the dialogue process. As far as I know, there is no.
श्रीनगर के NIT में गैर कश्मीरी छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना की जांच के आदेश। छात्र दोषी पुलिस कर्मियों को सजा देने के लिए अड़े।
इतनी इनोसेंट्स मरे 2008 में 2012 में, तब सेंटर ने इंटरवीन नहीं किया। तो ये जो भी हवा क्रिएट की जा रही है, ये जस्ट एक हॉक्स है और हम इसको एक प्रोपेगेंडा की नजर से देखते हैं, जो कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश है।
बांग्लादेश में एक और धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर की हत्या। खबरें और भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार सुशीला सिंह से। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया निलंबित है। अब्दुल बासित से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पठानकोट हमले के दोषी मसूद अजहर को लेकर चीन के रुख पर सवाल पूछा गया, तो उनका कहना था कि हम चीन के रुख को सही मानते हैं। चीन ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रयासों को वीटो कर दिया था। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष विचारों को फेसबुक पर जाहिर करने वाले कानून के एक छात्र की हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार कल देर रात निजामुद्दीन समाज जब एक ट्रैफिक चौराहे पर रुके थे, तभी उन्हें पहले चाकू मारा गया और फिर उन पर गोलियां चलाई गई। निजामुद्दीन समाज की हत्या के विरोध में राजधानी ढाका में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। 28 साल के समाज धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करने वाले समूह गण जागरण मंच के संयोजक बताए जाते हैं। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनुल हक इनू का कहना था,
इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच यू कैनॉट डिफेम और डिसऑनर।
निजामुद्दीन समाज की हत्या बताती है कि बांग्लादेश में चरमपंथी काम कर रहे हैं। वो धर्मनिरपेक्ष विचारों वाले लोगों को या तो मार रहे हैं या हमला कर रहे हैं। मैं इस हमले की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे अन्य हत्याओं के मामले में लोगों पर मुकदमा चल रहा है, इस मामले में भी जल्द ही कार्रवाई पूरी होगी। ये थे बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनुल हक इनू के शब्द। पनामा की एक लॉ फर्म मोसाक फोंसेका के लीक हुए लाखों दस्तावेजों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार किया है और कहा है कि विपक्ष रूस को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इन गोपनीय दस्तावेजों में कहा गया है कि पुतिन के करीबी सहयोगियों की विदेशों में कंपनियां हैं और शायद इन कंपनियों का काले पैसे को सफ़ेद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इराक के शहर फलूजा में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। संस्था का कहना है कि ये शहर इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है और यहाँ के रिहायशी फंसे हुए हैं। सरकारी सेना ने इस इलाके में बिजली काट दी है और शहर को इस्लामिक स्टेट से छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। संस्था का कहना है कि लोगों के पास खाने के सामान की कमी हो रही है, वहीं भोजन और दवाई की कमी के कारण लोगों की मौत होने की भी अपुष्ट खबरें आ रही हैं। म्यांमार में आंग सांग सूची की नई सरकार का कहना है कि वह आने वाले हफ्तों में बाकी बचे राजनीतिक नेताओं को रिहा कर देगी। ये माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद 500 लोग रिहा हो जाएंगे। जिन कार्यकर्ताओं को दोषी पाया गया है उन्हें माफ कर दिया जाएगा और जो मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं उन पर से आरोप हटा दिए जाएंगे। हाल ही में आंग सांग सूची को स्टेट काउंसलर का पद दिया गया था। इस पद को लेने के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करना उनके प्रशासन की प्रमुखता होगी। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी अभी आपने सुशीला सिंह से सुना, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया पर संयुक्त बातचीत फिलहाल निलंबित है। अब्दुल बासित आज दिल्ली के फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बातचीत में भारत से जुड़े कई मुद्दों पर जो सवाल पूछे गए उनके जवाब दिए। किन किन सवालों के जवाब में बासित ने क्या क्या कहा, विनीत खरे ने बड़े ध्यान से उनके बयानों को सुना है। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
दिल्ली में आज अब्दुल बासित के जवाब भारतीय सरकार के लिए कई सवाल खड़े कर सकते हैं। जिस तरह पठानकोट एयरबेस पर चरमपंथी हमले को लेकर 5 सदस्यीय पाकिस्तानी जांचकर्ताओं की टीम भारत आई थी, क्या भारतीय जांचकर्ता भी पाकिस्तान जाएंगे? अब्दुल बासित ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर उन्हें लगता है कि इस पूरी जांच पड़ताल में आदान प्रदान की बात नहीं है, बल्कि इस मामले की तह तक जाने के लिए सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। याद रहे कि भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि उनकी तरफ से पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को पठानकोट हमले में पाकिस्तानी चरमपंथियों के कथित तौर पर शामिल होने के कई सबूत दिए गए थे। एनआईए के अनुसार पाकिस्तानी जांचकर्ताओं से सहयोग का आधार आपसी सहमति और एक दूसरे की मदद के आधार पर हुआ था। एनआईए के अनुसार पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को सूचना दी गई कि एनआईए के अधिकारी पठानकोट हमले की जांच को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान जाना चाहेंगे, लेकिन अब्दुल बासित के आज के बयान के बाद अब इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। पठानकोट एयरबेस पर हमले में 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। भारत पाकिस्तान की बातचीत पर अब्दुल बासित ने कहा कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया पर बातचीत निलंबित है।
I think at present it is suspended. So let's see if we are able to commence the dialogue process.
पाकिस्तान में जासूसी के आरोपों में पकड़े गए कुलभूषण जाधव के मामले में अब्दुल बासित ने कहा कि यह गिरफ्तारी उस बात को साबित करती है जिसे पाकिस्तान काफी समय से कहता रहा है।
The recent arrest of Kulbhushan Yadav in Pakistan irrefutably corroborates what Pakistan has been saying all along.
अब्दुल बासित का कहना था, भारत के आग्रह पर विचार हो रहा है, लेकिन कह नहीं सकते कि उन्हें कब काउंसलर की मदद मिल पाएगी। भारत ने माना था कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके जासूस होने के आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को आतंकवादी करार देने की भारतीय कोशिशों पर अब्दुल बासित ने कहा कि वो चीन के रुख को सही मानते हैं। भारत मसूद अजहर को पठानकोट हमले का दोषी मानता है। चीन ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रयासों को वीटो कर दिया था। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि ये मामला नियमों को पूरा नहीं करता। अब्दुल बासित के बयानों के बाद अब निगाहें होंगी भारतीय सरकार के रुख पर। साथ ही देखना होगा कि विपक्ष, जो पहले ही सरकार की पाकिस्तान नीति और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के भारत आने का विरोध करता रहा है, वो अब क्या कहता है।
विनीत खरे की रिपोर्ट। तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया फिलहाल निलंबित है। मैंने बात की वरिष्ठ राजनयिक विवेक काटजू से और पूछा कि क्या अब्दुल बासित के इस बयान को औपचारिक माना जाए और इस तमाम बातों के क्या मायने निकाले जाए।
पहले तो उच्चायुक्त जो है वो कभी भी अनौपचारिक टिप्पणी नहीं करते, ये तो मान के चलिए कि ये औपचारिक है।
मतलब अगर वो कह रहे हैं कि बातचीत निलंबित है तो हम इसे माने कि ये निलंबित बातचीत है।
वाकई, क्योंकि उच्चायुक्त अगर अपने देश का जो पक्ष है वो नहीं रखें या उससे हट के रखें कुछ, तो फिर वो अपना काम नहीं कर रहे। और बासित साहब तो अनुभवी डिप्लोमैट हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वही उनके देश का इस वक्त स्टैंड। आपने जो सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब मुझे तो यही दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि भारत से संबंध अच्छे हों। ये उसका हमेशा से रवैया रहा है और वही रवैया अभी भी।
तो मतलब अगर हम दूसरी तरह की राजनीति की बात करें या कूटनीति की बात करें, अगर मोदी साहब नवाज शरीफ के यहाँ जाते हैं और ये जो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर दो स्टेप पीछे आ गए।
देखिए, ये हम मान के भी चलें कि नवाज शरीफ जानते हैं कि उनकी देश की प्रगति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती जब तक कि भारत से संबंध अच्छे नहीं हों, खासतौर से आर्थिक संबंध और व्यापारिक संबंध नहीं ठीक हों। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी फौज या उनकी पाकिस्तान की सेना, जो उन पर हावी है सुरक्षा नीति के हवाले से, इसकी इजाजत देती है। आतंकवाद का मसला अगर आप देखें तो आतंकी कौन है, ये पाकिस्तानी सेना के एक अंग है। हमें इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कहने, ये जो गुट हैं, लश्कर है या लश्कर ए तोयबा है या जैश ए मोहम्मद है, इनका पाकिस्तानी सेना ने इस्तेमाल किया है। उनके जो विदेशी हित हैं, उनके जो सामरिक हित हैं, उनको आगे बढ़ाने में। मसूद अजहर पे जो बयान दिया है आज बासित साहब ने,
हाँ, उन्होंने कहा कि वो चीन की राय से इत्तेफाक रखते हैं।
हाँ, बताइए आप, अब मसूद अजहर कौन है? कौन नहीं जानता है कि मसूद अजहर आतंकी है? लेकिन पाकिस्तान, जो कि कहते हैं कि वो आतंकवाद के शिकार रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को, मसूद अजहर जैसे लोगों को एक किस्म से सर्टिफिकेट देंगे, एक किस्म से उनका बचाव करेंगे, उनका पहल करेंगे, तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकालें?
लेकिन जब अभी जब पठानकोट पर हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह का रवैया पाकिस्तान की ओर से देखने को मिला कि वो वाकई बहुत गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर,
क्या आपको आज भी लग शक है कोई कि वो गंभीर? आज क्या उनकी मंशा जो है साफ नहीं हो रही है? उनके जो अभी जब वो टीम जब यहाँ थी तब पाकिस्तान के अखबारों में रिपोर्टें छप रही थी और जिससे साफ जो ये जो कि ऑफिशियल लीक्स थे वो रिपोर्टों के अनुसार एनआईए उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा था। जब टीम लौटी तो फिर जो आप बयान आ रहे हैं वो आप देख लें सोर्स रिपोर्ट्स। आज जो फिर जो उन जो कल उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा उनका बयान देख लें आप। उस सबसे क्या लगता है? उन सबसे तो यही लगता है कि एक किस्म का ड्रामा वो शायद खेल रहे थे।
लेकिन वो तो खुद भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत पठानकोट हमले का ड्रामा कर रहा है।
तो ये तो बकवास है ना, ये कौन इस पे विश्वास करेगा? किस काल्पनिक दुनिया में वो रह रहे हैं?
पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बयानों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ राजनयिक विवेक काटजू।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
श्रीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चल रहे बवाल के विरोध में आज जम्मू क्षेत्र में बंद का आह्वान किया गया। उधर श्रीनगर में आज सरकार ने गैर कश्मीरी छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना के जांच के आदेश दिए, लेकिन छात्र दोषी पुलिसकर्मियों और अध्यापकों को सजा देने की मांग पर डटे हुए हैं। दिन भर क्या कुछ घटा, सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
घाटी के एकमात्र एनआईटी में आज तीसरे दिन भी कक्षाएं बंद रहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक के राजेंद्र ने आज कैंपस का दौरा किया जिसके दौरान गैर कश्मीरी छात्रों ने पुलिस और कॉलेज स्टाफ के विरोध में प्रदर्शन किए। जम्मू क्षेत्र में नेशनल पैंथर्स पार्टी और श्रीराम सेना की कॉल पर छात्रों के लाठीचार्ज के विरोध में आज बंद रहा। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आज घाटी का दौरा किया। वो कैंपस में तो नहीं गए लेकिन उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल की घटना के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर केंद्र सरकार को पेश की जाएगी। इस बीच पुलिस और सीआरपीएफ ने कॉलेज की नाकाबंदी कर रखी है और स्थानीय मीडिया को कैंपस में जाने की अनुमति नहीं दी गई। एनआईटी के निकट स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस मामले में अपने विचार यूं व्यक्त किए।
पूरी तरह से डिमिलिट्राइज करो आप एनआईटी को, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है। रही फिर बात इनके फ्लैग की, ये भारत माता की जय बोलेंगे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन ये किसी को बुलवाने पे मजबूर नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने एक कुरियर बॉय को मारा, सिर पे मारा रॉड से और उसको बोला कि भारत माता की जय बोलो तभी हम आपको छोड़ देंगे। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी मिसक्रेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी वेंडलाइज की, पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉलेज प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रार की गाड़ी, और जिन्होंने अब्यूज़ किया एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोफेसर्स को, उनको बुक किया जाए, उनको उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन किया जाए अंडर लॉ।
लोकल्स जो स्टूडेंट हैं उन पे कितनी अट्रॉसिटीज़ हो गई पुलिस की, कि आज दो स्टूडेंट्स जो इन्होंने अपेरेंटली वो लोकल्स थे बट दे फ्रेम्ड इट कि ये नॉन लोकल्स है, इनको पीटा जा रहा है।
आपको ये भी पता है कि वही यही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है जिसने मिलिटेंसी की कमर तोड़ी, यहाँ पे कितने इनोसेंट्स मरे 2008 में 2012 में, तब सेंटर ने इंटरवीन नहीं किया, तब कोई सामने नहीं आया। तो ये जो भी हवा क्रिएट की जा रही है ये जस्ट एक हॉक्स है और हम इसको एक प्रोपेगेंडा की नजर से देखते हैं जो कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश है।
स्थानीय छात्रों की बात अपनी जगह, लेकिन एनआईटी के आउटस्टेशन छात्र कहते हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज से 14 छात्र घायल हो गए थे। इन छात्रों ने फेसबुक द्वारा उन खबरों का भी खंडन किया है जिनमें बताया गया था कि कैंपस में मंदिर के निर्माण की मांग की जा रही है। भारत संसाधन मंत्रालय की टीम आज भी कैंपस में मौजूद रही और अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन दिलाया कि इनकी मांगे पूरी होंगी। एनआईटी के गैर कश्मीरी छात्रों का कहना है कि इन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए, कॉलेज को जम्मू शिफ्ट किया जाए और कॉलेज के भीतर इन्हें तिरंगा लहराने पर न रोका जाए। आज भी छात्रों ने कैंपस में भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगा लहराया। अलगाववादी नेता सईद अली गिलानी ने कश्मीरियों से अपील की है कि वो बाहर से यहाँ शिक्षा प्राप्ति के लिए आने वाले किसी भी विद्यार्थी को असुरक्षा का एहसास न दिलाएं। ताहम उन्होंने भारत सरकार की आलोचना की।
हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमारे प्यारे रसूल का हुक्म है, हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जो बाहर से बिहार के लड़के यहाँ आकर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लड़के जो बाहर जाकर पढ़ते हैं उनको जो अजियत पहुंचाई जाती है वो हिंदुस्तान की सारी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा दाग है और जब तक वो इसका इलाज नहीं करेंगे ये दाग नहीं मिटेगा।
विधायक इंजीनियर रशीद ने भी अपने उस बयान को आज स्पष्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि एनआईटी पर पूरे देश में मचे बवाल से वो राज ठाकरे बनने पर मजबूर हो जाएंगे।
हमने इसीलिए कहा था कि आपके दोहरे मेयार नहीं हो सकते हैं, आप कश्मीरियों को अपने घरों में पराए बना रहे हो, हमें यहाँ पर, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम भी उसका रेड एम्बल यहाँ पर दिखाने के लिए मजबूर हो जाएं और हम ये कहें कि अगर कश्मीरी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता है। उसी चीज़ को लेकर हमने कहा था कि आप हमें ऐसी हरकत के लिए मजबूर न करें जो राज ठाकरे या उनकी जो शिवसेना है जो वो महाराष्ट्र में करती हैं, हमें उस चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया जाए, हम क्रिमिनल लोग नहीं हैं।
गौरतलब है कश्मीर के एनआईटी में करीब 2000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1500 से अधिक कश्मीर से बाहर के राज्यों से हैं। यहाँ राजनीतिक वर्गों ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से कहा है कि इस घटना के संदर्भ में कश्मीर पुलिस के विरोध कार्रवाई करने से पुलिस का मनोबल प्रभावित हो सकता है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
रुख बांग्लादेश का करते हैं। बांग्लादेश में धर्म निरपेक्ष विचारों को फेसबुक पर जाहिर करने वाले कानून के एक छात्र की हत्या कर दी है। राजधानी ढाका में विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने विरोध में प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। पिछले साल भी धार्मिक कट्टरवादियों ने करीब 5 धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों को अपना निशाना बनाया था और उनकी हत्या की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पहले की वारदातों के दोषियों को सजा दी गई होती तो हत्या की ये नई वारदात न हुई होती। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
पुलिस ने बताया कि बुधवार देर रात नजीमुद्दीन समाद जब एक ट्रैफिक चौराहे पर रुके हुए थे तभी उन्हें पहले चाकू मारा गया और फिर उन पर गोलियां दागी गईं। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक पुलिस ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 हमलावरों ने समाद को गोली मारी। पुलिस ने इस मामले में किसी संदिग्ध की पहचान नहीं की है, न ही इसके पीछे किसी धार्मिक मकसद की पुष्टि की है। नजीमुद्दीन समाद ने फेसबुक पर कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना करते हुए कई टिप्पणियां की थी। 28 साल के समाद धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करने वाले समूह गण जागरण मंच के संयोजक बताए जाते हैं। नजीमुद्दीन समाद जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के छात्र थे और कानून की पढ़ाई कर रहे थे। समाद अपने फेसबुक पेज पर धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लगातार लिखते रहे थे। फेसबुक में अपने प्रोफाइल में धार्मिक विचारों वाले कॉलम में उन्होंने लिखा था कि मेरा कोई धर्म नहीं है। समाद की हत्या से नाराज सैकड़ों की तादाद में विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इंसाफ की मांग की। बांग्लादेश आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है लेकिन आलोचकों का मानना है कि सरकार इन हमलों से निपटने में नाकाम रही है। ढाका में हुए प्रदर्शन में शामिल बिलाल हुसैन ने कहा कि हत्या में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए।
हम यहां इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में कानून के एक छात्र की निर्ममता से हत्या कर दी गई। हम इसकी पूरी जांच चाहते हैं और हत्या के इंसाफ की मांग करते हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पहले हुई हत्याओं के दोषियों को पकड़कर सजा दी गई होती तो अब समाज पर हमला नहीं हुआ होता। हाल के महीनों में धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में लिखने वालों पर कई जानलेवा हमले किए गए हैं। हालांकि अब तक हमले के दोषियों का कोई सुराग नहीं मिला। पिछले साल 4 प्रमुख धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों की हत्या हुई है। उनके नाम उस 84 नामों वाली सूची में थे जिसे 2013 में एक इस्लामिक ग्रुप ने जारी किया था। राजधानी ढाका में पिछले साल 7 अगस्त को एक धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर निलॉय नील की हत्या कर दी गई। निलॉय की उनके घर में धारदार हथियार से हत्या की गई थी। बांग्लादेश के ब्लॉगरों के मुताबिक निलॉय फेसबुक और ब्लॉग में अपनी धर्मनिरपेक्ष लेखनी के लिए जाने जाते थे। ब्लॉगरों का कहना है कि वो अपने लेखों के जरिए इस्लामी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। बांग्लादेश में पिछले साल 12 मई को अनंत विजय दास की सिलहट शहर में नकाबपोश लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस का कहना था कि एक सेकुलर ब्लॉगर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। अनंत विजय दास मुक्तोमोनो वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखते थे। कभी इस वेबसाइट को अभिजीत रॉय चलाते थे जिनकी पिछले साल ही फरवरी में इसी तरह राजधानी ढाका में हत्या कर दी गई थी। अभिजीत रॉय बांग्लादेशी मूल के अमरीकी ब्लॉगर थे जो धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ लिखते थे। अनंत की हत्या के बाद उनके एक दोस्त ने बताया था कि वो इस्लामी चरमपंथियों की तरफ से बनाई गई कथित नास्तिक ब्लॉगरों की हिटलिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा एक अन्य ब्लॉगर वशिकुर रहमान की मार्च में ढाका में हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में पहले भी शिया, सूफी और अहमदी मुसलमान, ईसाई और हिंदुओं जैसे अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों की लगातार हो रही हत्याओं ने देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी और सेकुलर विचारों की सिकुड़ती जगह को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश एक खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ रहा है।
बांग्लादेश में एक और धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर की हत्या। रुक एक बार फिर से भारत का करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आईपीएल का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शनिवार यानी कि 9 अप्रैल को पहले से तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। अदालत ने आज कहा कि मुंबई में पहले मैच का आयोजन रद्द करने के बारे में याचिका काफी देर से दायर की गई है। हालांकि सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों के आयोजन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने मुंबई क्रिकेट इकाई से पूछा है कि ऐसे समय में सूखे के कारण लोग मर रहे हैं और आपको स्टेडियम मैदानों के रखरखाव की पड़ी है। सुनिए मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
मुंबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र में होने वाली पहली आईपीएल मैच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि यह मैच खेला जा सकता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 9 अप्रैल को यह मैच खेला जाएगा। हालांकि अदालत ने क्रिकेट संगठन तथा सरकार से कहा है कि मैच के लिए पानी कहां से इस्तेमाल किया जाएगा इसका पूरा ब्यौरा दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा है कि याचिका दायर करने में काफ़ी देर हुई है, यह देखते हुए उद्घाटन की पहली मैच को इजाज़त दी जाती है। अदालत के इस फैसले पर याचिकाकर्ता केतन तिरोड़कर ने मीडिया को बताया,
मैंने तीन बातें बताई, हमको तारीख मिली है, आईपीएल को गो अहेड मिला है और गवर्नमेंट को फटकार मिली है। गवर्नमेंट को कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये पानी कहां से सप्लाई होता है। ऐसा माना गया है कि गवर्नमेंट को शायद पता ही नहीं है पानी कहां से सप्लाई होता है। बात ऐसा है, ये कौन सा मैदान है जहां पर रोज अगर पानी ना डाला जाए तो मेंटेन हो सकता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। पानी कहां से आता है, ये नेचुरल रिसोर्स है पानी। पानी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मुंबई के पानी पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अधिकार है, चाहे वो कहीं भी आता हो चाहे मेरे घर पर आता हो। अगर लोग मर रहे हैं तो वो पानी पर पूरा समाज का अधिकार है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता।
आप चाहते थे कि आईपीएल को स्टे मिले लेकिन वो नहीं हो पाया।
आईपीएल एक मुद्दा हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है ड्रॉट और उसके ऊपर एक्शन। किसी को खेलने में लगी है, लोग मरते रहे, लोग परेशान होते रहे, प्रॉब्लम ये सेंसिटिविटी समाज से खत्म हो चुकी है, पॉलिटिक्स से खत्म हो चुकी है।
ये थे केतन तिरोड़कर। महाराष्ट्र की कई जिलों में सूखे की समस्या गंभीर है, ऐसे में आईपीएल मैचों पर पानी खर्च होने पर आपत्ति जताते हुए इन मैचों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। इस याचिका पर कल हुई सुनवाई में अदालत ने बीसीसीआई तथा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को आड़े हाथों लिया था। अदालत ने कहा था कि सूखे से जूझते हुए लोगों को पानी देना ज़रूरी है या फिर आईपीएल मैचेस। अदालत ने यह भी सवाल किया था कि महाराष्ट्र में होने वाली मैचेस किसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं ले जा सकते। इस सवाल पर क्रिकेट संगठन ने दलील दी थी कि इतने कम समय में मैच की नियोजित जगह बदलना काफ़ी मुश्किल होगा। इस मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
तो पहला मैच तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही आईपीएल का होगा। और अब आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ हैं
इंदु पांडे।
इंदु पांडे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत सारी चिट्ठियां, बहुत सारे अंतर्देशीय लिफाफे, पीले पोस्टकार्ड और ईमेल, ये सब खजाना आप लेके आई हैं।
पहली चिट्ठी लेते हैं नीतीश कुमार यादव की, दुल्लमचक थाना चौरी, जिला भोजपुर, बिहार से। लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, फैला उजियारा को जल्द से जल्द शुरू करें तथा दुनिया जहान की तरह विज्ञान पर आधारित कोई कार्यक्रम अगर शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा।
और भी उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है।
जी हाँ, और आपसे अनुरोध किया है कि भारत में विभिन्न राज्यों के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं पर कोई रिपोर्ट प्रसारित करें।
जी, फैला उजियारा के बारे में जो इनका कहना है वो तो अभी कुछ ही समय पहले ये श्रृंखला समाप्त हुई है, लेकिन हाँ कभी कभी हम अपने कार्यक्रमों को फिर से प्रसारित करते हैं, तो आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है ये आपकी मुराद पूरी हो ही जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा कोई नया कार्यक्रम शुरू हो।
और विवेचना की तारीफ की है और कहते हैं कि क्रिकेट तथा फुटबॉल के महान खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया
जाए। बहुत अच्छा सुझाव है और ये आपका सुझाव रेहान फजल तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन विवेचना पर ही और भी बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं।
ये हैं अशोक कुमार ठाकुर, मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा से। लिखते हैं कि विवेचना इनको बहुत पसंद आई, मनोहर श्याम जोशी की 10वीं वर्षगांठ पर जो जानकारी दी गई उससे युवा लेखकों में नया जोश उमंग भरा गया।
जी बहुत अच्छे।
ये संपत सिंह हैं भरतपुर राजस्थान से, इनको भी रेहान फजल जी ने जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा लगा, कहते हैं कि भाई उन्होंने तो हमारा दिल जीत लिया और उनके जैसे लेखक हिंदी साहित्य में अगले 100 वर्षों में भी क्या होंगे भला।
जी मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मनोहर श्याम जोशी एक बार लंदन आए थे अपनी मृत्यु से कुछ ही पहले, और मैंने उनसे बातचीत की थी, उनका एक लंबा इंटरव्यू उस जमाने में मैंने किया था। तो आज जब मनोहर श्याम जोशी का जिक्र हो रहा है तो वो शाम मुझे याद आ गई है लंदन की।
और अजय प्रकाश शर्मा लाडपुर हाथरस से लिखते हैं कि सभी बीबीसी परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये नियमित श्रोता हैं और इनका कहना ये है कि ये बताना चाहते हैं कि प्रसारण में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी उच्च क्वालिटी की आती है और साफ और स्पष्ट है।
इंदु जी, ऐसी चिट्ठियां हमारे पास बहुत कम ही आती हैं क्योंकि बहुत सारे श्रोता शिकायत करते हैं कि उन्हें हमारे कार्यक्रम रेडियो पे बहुत साफ नहीं सुनाई पड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ इन चिट्ठियों में और इस तरह की शिकायतें भी होंगी, लेकिन कुछ श्रोता ये कहते हैं कि उनको सभी कार्यक्रम बहुत साफ साफ सुनाई पड़ते हैं। कोई ऐसी चिट्ठी है आपके पास क्या?
साफ सुनाई पड़ते हैं ऐसी तो नहीं है, बल्कि ये लिखा है कि साफ सुनाई नहीं देता है, लेकिन इसमें
नाम क्या है इनका?
कुमार जिला मोतिहारी से कहते हैं कि जब मैं गांव में होता हूं तो कार्यक्रम अच्छे सुनाई देते हैं, लेकिन जब मोतिहारी शहर में जाता हूं तब नहीं पकड़ते।
ये तो शिकायती चिट्ठियां थी, लेकिन इंदु जी अब एक चिट्ठी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। इनका नाम है श्रवण सिंह, इन्होंने ईमेल भेजा है और ये कहते हैं कि आपके सभी हिंदी रेडियो के कार्यक्रम मेरे इलाके में बहुत साफ सुनाई पड़ते हैं, जबकि मेरे घर में 24 घंटे बिजली चलती रहती है लेकिन फिर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये इन्होंने उदाहरण दिया है, मेरे पास फिलहाल टेक्सन कंपनी का PL660 रेडियो है जिसमें बेहतर रिसेप्शन के लिए सिंगल साइड बैंड यानी SSB और नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए फिल्टर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया गया है। यानी ऐसे रेडियो में ये सुनते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे हमारे श्रोताओं के पास इस तरह के रेडियो नहीं भी हो सकते हैं या हो भी सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है साहब कि आप तक हमारे ट्रांसमिशन, हमारे कार्यक्रम बहुत साफ साफ पहुँचें। अभी कुछ ही समय बाद एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे पॉडकास्ट जब से शुरू होने लगेंगे तब से आपके लिए और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। एक आध दो चिट्ठी और ले लें अगर आप के पास हों तो, नहीं तो हम अपने श्रोताओं को पता बताएं।
बहुत एक छोटी सी चिट्ठी है सुमंत कुमार की, कहते हैं बस ये कि मेरा पहला मेल है।
सिर्फ इतना ही लिखा है? ये कहाँ से लिखा है इन्होंने? इनका गांव का शहर का?
बांका बिहार से लिखते हैं ये।
बांका से लिखते हैं बिहार से, नाम क्या बताया?
सुमंत।
सुमंत सुमंत, जब भी आप हमें चिट्ठी लिखें, हमारे कार्यक्रमों के बारे में लिखें, आपको कोई कार्यक्रम पसंद आया पसंद नहीं आया, क्या कमी हुई क्या बेशी हुई, जब आप ये लिखेंगे तब आपकी चिट्ठियां शामिल करने में हमें और खुशी होगी। तो दोस्तों अब हमारे जाने का समय हो गया है। पता नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। नमस्कार।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में खेल समाचारों की बात करते हैं। रजत चान्ना मौजूद है। रजत
जी, कल से हो रही है IPL 9 की शुरुआत और एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच होगा चरम पर। कल मुंबई के वर्ली में ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन होगा जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे और अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस समारोह में अमेरिकी गायक क्रिस ब्राउन भारत में पहली बार परफॉर्म करेंगे। कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ और योयो हनी सिंह भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा ने बताया कि खेल और मनोरंजन से भरपूर होगा इस बार का IPL।
मुकाबला बहुत कठिन होने वाला है, लगभग सभी टीमें बराबर हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये टीम अच्छी है वो टीम अच्छी है, क्योंकि बहुत फेर बदल किया गया है इस टीम में। और ओपनिंग सेरेमनी के क्या कहने, हर साल बेहतर करते हैं। इस बार मेजर लेजर आ रहे हैं, क्रिस ब्राउन आ रहे हैं, कैटरीना कैफ डांस कर रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीजन 9 को लेकर। और जिस तरीके से ये 20 ओवर की क्रिकेट लीग खेली जाती है, क्रिकेट मुकाबला बहुत कड़ा होता है, लेकिन जो दर्शक स्टेडियम में बैठे होते हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट भरपूर है।
जी बिल्कुल, इस सीजन का पहला मुकाबला 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच मुंबई में ही खेला जाएगा। वहीं हॉकी में मलेशिया में जारी 25वें सुल्तान अजलान शाह कप में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से 5-1 से शर्मनाक हार मिली आज। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में दबदबा बनाया और 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर करके पहला गोल दाग दिया। हालांकि भारत ने जवाबी हमला किया और ड्रैग फ्लिकर रुपेंद्र पाल सिंह ने बराबरी का गोल किया, लेकिन उसके बाद भारतीय खिलाड़ी ढीले गए और ऑस्ट्रेलिया ने 4 गोल दाग के ये मैच बड़ी आसानी से जीत लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चान्ना। और कार्यक्रम में अब मुख्य समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया निलंबित है। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष विचारों को फेसबुक पर जाहिर करने वाले कानून के एक छात्र की हत्या कर दी गई है। पनामा की एक लॉ फर्म मोसाक फोंसेका के लीक हुए लाखों दस्तावेजों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से उन्होंने इनकार किया और कहा कि विपक्ष रूस को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।